नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपीआई को भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बताया और कहा कि ये जल्द ही नकद लेन देन को पीछे छोड़ देगी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिंगापुर के अपने समकक्ष ली सियन लूंग की मौजूदगी में यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा की शुरुआत के मौके पर कहा कि भारत की भुगतान सेवा यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच इस सुविधा की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में यूपीआई के जरिए 1,26,000 अरब रुपए से अधिक के 74 अरब लेन देन हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई अब अन्य देशों में भी अपने कदम बढ़ा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने इस सुविधा को शुरू किया। दास ने सुविधा के जरिए पहला लेन देन भी किया। मोदी ने कहा, कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत का डिजिटल वॉलेट लेन देन जल्द ही नकद लेन देन को पीछे छोड़ देगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बिजली उद्योग से बड़े निर्यात लक्ष्य तय करने और उस दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र ने 10 अरब डॉलर का निर्यात किया है और अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। गोयल ने बिजली उद्योग के एक कार्यक्रम में कहा, मैं इस प्रदर्शन से बेहद खुश हूं और साथ ही दुखी भी हूं। ये दिल मांगे मोर, बिजली उद्योग भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करता है। वक्त आ गया है कि दुनिया हमारा मंच बन जाए। हमें केवल विकासशील देशों में नहीं बल्कि दुनिया के विकसित हिस्से में भी प्रदर्शन करना है। उन्होंने उद्योग जगत को अन्य देशों के साथ यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शनी आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हमें सीधे बड़े बाजारों में जाना चाहिए और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति तथा विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों का प्रदर्शन करना चाहिए। हमें दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि भारत उनकी सभी ऊर्जा जरूरतों में एक भरोसेमंद भागीदार हो सकता है। गोयल ने उद्योग से उत्पाद की गुणवत्ता पर खासतौर से ध्यान देने को कहा। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बायजूस की सह संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से शैक्षणिक परिणाम बेहतर हो रहे हैं। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र खासतौर से कोविड महामारी के बाद तेजी से बढ़ा है। उन्होंने यहां GSV+ एमिरेट्स इंडिया समिट के मौके पर PTI भाषा से कहा, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि जब हम एक संगठन के रूप में अच्छा करते हैं तो व्यापार से आगे बढ़कर काम करते हैं। हम समाज के लिए अच्छा करते हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप वित्तीय लाभ के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसा किया जा सकता है। बायजूस के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के पास करीब 75 लाख भुगतान करने वाले ग्राहक हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को मोबाइल परिचालकों के लिए मिड बैंड के 6 GHz स्पेक्ट्रम को अलग रखने की वकालत की। 6 GHz स्पेक्ट्रम को 5G के लिए बेहतर और संतुलित माना जाता है। COAI का कहना है कि ये 5G सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। इसे सभी के उपयोग के मकसद से लाइसेंस के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। इससे गुणवत्ता तथा अगली पीढ़ी की सेवाओं की लागत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए 6 GHz स्पेक्ट्रम बेहतर और प्रभावी माना जाता है। फिलहाल मिड बैंड में मौजूदा स्पेक्ट्रम दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकता से काफ़ी कम है। साथ ही 6 GHz स्पेक्ट्रम अपने प्रसार गुणों के साथ घनी आबादी वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से शहरी स्थानों के लिए बेहतर है। बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजली घरों से 16 मार्च से 15 जून तक पूर्ण क्षमता पर काम करने को कहा है। इस साल बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिए जारी आदेश 16 मार्च 2023 से 15 जून 2023 के लिए है। ये नोटिस आयातित कोयले का उपयोग करने वाली 15 बिजली घरों को भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने पिछले साल मई में भी इन बिजली घरों के लिए पूर्ण क्षमता पर काम करने को लेकर आदेश जारी किए थे। इन 15 आयातित कोयला आधारित बिजली घरों में गुजरात के मुंदड़ा में टाटा पावर और अडानी पावर के संयंत्र, सलाया में SR पावर बिजली घर, JSW रत्नागिरी, टाटा ट्रॉम्बे UDP पावर, मीनाक्षी एनर्जी और JSW तोरांगुलू शामिल हैं। देश में बिजली की अधिकतम मांग 2,30,000 मेगावाट पर पहुंचने का अनुमान है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।